ओम शांति ओम शांति ओम प्रेम ओम प्रेम ओम आनंद ओम आनंद परमानंद परमानंद परम सुखदाता दुखहर्ता सुखकर्ता कर्मों की गति का ज्ञान देने वाले बाबा हम बच्चों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो आप सब ज्ञानी तो आत्माएं योगी तो आत्माएं ओम शांति के साथ साथ गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने सीढ़ी में कौन सा राज समझाया है इस बात पर ध्यान खिंचवाया है। तीन चित्र मुख्य है, त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष, उसके साथ सृष्टि चक्र। परंतु जब से सीढ़ी का चित्र ये बाद में बना है तो बाबा ने बहुत बारी सीढ़ी के चित्र पर हमारी कहानी सुनाई। आज फिर सीढ़ी के चित्र में दुख का समय और सुख का समय, चढ़ती कला और उतरती कला का कारण क्या है। चढ़ते हैं तो कितने सत्व प्रधान बन जाते, गिरते हैं तो हमारी स्टेज तमो प्रधान। चढ़ते हैं तो हीरे तुल्य बन जाते, पावरफुल, वैल्यूबल, स्ट्रांग, हीरे को कोई कठिन नहीं कर सकता हाथ से। और कौड़ी माना खोखली, खाली, आकर्षण है, सुंदरता है, परंतु सार नहीं है लाइफ में। तो हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य, फिर कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाला कौन, और हमारे जीवन की वैल्यू को खत्म करने वाला। वैल्यूज है जीवन के दिव्य गुण, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता, श्रेष्ठता, कल्याण की भावना। तो आज बाबा ने ज्ञान और भक्ति का राज, चढ़ती कला और उतरती कला, दुख सुखदाता कौन है, दुखदाता कौन है। और कोई कहते हैं भगवान दुख देता है, ईश्वर दुख नहीं देता, परंतु जब रियलाइज कराता है कि तुमने इस भूल के कारण दुखी हुए, तो रियलाइज कराने वाले को कह दिया ये दुख देता है। पर रियलाइज कर लेने के बाद श्रेष्ठ कर्म करने की जो शक्ति देता है तो उससे दुख तो खत्म हो ही जाते हैं, पर अतीन्द्र सुख का झूला झूलते हैं। और आज बाबा ने, पहले बाबा ने कहा कि मैं आता हूं डांस सिखाने और डांस करने। तो आज रावण भी कैसे डांस करते हैं, रावण का डांस, राम के डांस के लिए हम इस थिएटर में बैठे हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए। ओम शांति। पहली मई की मुरली है, मुरली के मधुर महावाक्य अथवा सार है, मीठे बच्चे तुमने रावण की मत पर बाप की गुलामी की, रावण की मत पर बाप की की ग्लानी की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समझाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की डांस नहीं, और जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रलब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रलब्ध भोगते हो। ये गुह्य राव सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम शांति। आज सॉन्ग है ओम नमो शिवाय। तुम्हारे साथ ही सर्व संबंध है, तुम्ही माता तुम्ही पिता तुम्ही बंधु तुम्ही सखा। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी बहुत की भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं। डांस का मतलब अकेला डांस नहीं है। जब भी डांस होता है तो ताल से ताल मिला के चलना। डांस का मतलब है कि स्टेप एक जैसे हो, हाथ का मूवमेंट एक जैसा हो। अगर इंडिविजुअल डांस भी है तो उसमें हारमनी है सेंस ऑर्गन्स के। तो ये जब ज्ञान का डांस है तो जितने हमारे वैल्यूज हैं लाइफ में, जो गुण हमारे में है वो एक दो के वो सपोर्ट देते हैं। जितना जितना सर्व गुण संपन्न बनते हैं और जीवन पवित्र बनता है तो हार्मनी और हैप्पीनेस होता है। डांस फिर भक्ति में बहुत सारी रिचुअल एक साथ चलती हैं। माथा टेको, दीपक तिलक लगाओ, ताली बजाओ, गीत गाओ, मिलके गाओ। तो वो एक डांस है, वैरायटी पोज़ेस। तो ये डांस ज्ञान की डांस है, पिता परमात्मा के समझ की डांस है। तो श्री कृष्ण जी को हमेशा डांस करते ही दिखा है। गोप गोपियों ने मिलके साथ में डांस किया, यानी गुप्त गुणों की धारणा करके एक दो के साथ हारमनी से रहना, खुशी में रहना, आनंद में रहना। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी बहुत भक्ति की डांस की, उस समय ज्ञान की डांस नहीं की। और भक्ति की जब डांस होती है तो ज्ञान की नहीं है, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं है। क्योंकि भक्ति उतरती कला से ले आती है, उतरती कला में ले आती है। सच्चित्तता में भक्ति नहीं होती, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रलब्ध पूरी होती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप पैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को कहता हूं, रियलाइज कराते हैं। तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानी कर दी है। भक्ति के नाम से महिमा नहीं की है, महिमा के नाम से ग्लानि की। सर्वव्यापी का दुख भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है। कोई कोई डिसेबल पैदा हुआ, भगवान ने ऐसा किया। इन प्रकृति कर्मों की गति को ना सामने रख के भगवान को ब्लेम किया। जब भारत में आदिनाथन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानी हो जाती है, तब मैं आता हूं। तो ग्लानी किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। बाप कहते हैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कलप कलप स्वर्गवासी सुखधाम का वासी बनाता हूं। तुम मेरी ग्लानी आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, स्वमान का धन, सुख का धन, वो ईश्वरीय आनंद नहीं रहा। तो तुम आसुरी मत कितने कंगाल बन गए। राम राज था, अभी रावण राज है। इसको ही जिसको हार और जीत अथवा दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं। बोले अगर द्वापर में आया हूं तो क्या रात बनाऊं क्या। मैं तो अंधकार को मिटा के प्रकाश करने आया हूं, अंधेरा करने नहीं आया हूं। कब आऊं, द्वापर में आया हूं क्या, दिन को रात बनाऊं क्या। अंधकार को ज्ञान सूर्य प्रगत्या, अज्ञान अंधेर विनाश। तो फिर इसको ही फिर थोड़ा विचार तो करो मैं कब आऊं और किस लिए आऊं। जिनको मैंने राज दिया था वही गवा बैठे। तो तुमको मैंने माला माल बनाया था, साल्वेंट बनाया था, तुम इनसाल्वेंट बन गए। कौड़ी से हीरा, हीरे से कौड़ी बन गए, मोहताज से सिताज बन गए। तो ये परमात्मा का प्यार परमात्मा को खींच के लाया बच्चों के प्रति। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है ना, कि मैं आकर के वर्षा देता हूं और रावण श्राप देता है। रावण तुमको श्रापित करता है, खास भारत को और आम दुनिया को। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, सनातन धर्म आदि भारत में ही था। पर कौन था वो भारत, कब उसमें किसने राज किया, भारत की महिमा का किसी को पता नहीं। कौन था भारत, कब था भारत भरपूर, कब था वो स्वर्ग अथवा सुखधाम, और कैसा था, कौन सा राज्य करते थे, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी समझते ही नहीं है। जो देवता थे मनुष्य की शक्ल के, वो भी थे तो मनुष्यात्माएं, तुम ही थे ना, परंतु तुम्हारी सीरत, चलन व्यवहार, वर्च्यूज देवताओं के थे। दिव्यता थी तुम्हारे में, अब भी सूरत तो मनुष्यों की है, भल मनुष्य की सीरत है, सूरत है, परंतु सीरत मेरा कैरेक्टर, एक्टिविटी, विचार, व्यवहार आश्री है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं है। एक कॉन्ट्रास्ट, मनुष्य तो है, मनुष्य की शक्ल है, और बुद्धि क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन पर समझ नहीं गई तो समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते, जानते नहीं। एक बात तो और ही बैठ करके गाली देते हैं, बाप की गिलानी करते हैं, बिल्कुल ही कौड़ी पल्ले बन गए हैं, भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और अभी तो तुम बच्चों को सन्मुख बैठ के समझा रहा हूं। जो बाबा ने कहा था परसों की मुरली में, सन्मुख बैठ करके सुनने का रस, डायरेक्ट सुनने का रस, तो तुम्हारा कितनी प्राप्ति आत्मा को होती है वो इनडायरेक्ट सुनने से नहीं होती है, अनुभव भी है। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। अब परमात्मा का क्या कर्तव्य चल रहा है, ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सूरत तो मनुष्य की है पर तुम्हारी सीरत बदल रही है, तुम्हारे अंदर दैवी गुण भरे जा रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं है, बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में हो, प्रलब्ध भोगते हो, यानी जो पहले से पुरुषार्थ किया हुआ है उसका रिवॉर्ड भोगते हो, प्रलब्ध भोगते हो। प्रलब्ध पहले वाली प्राप्ति जो गुम हो गई थी वो फिर से प्राप्त कर लेते हो। फिर द्वापर में रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रलब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में प्रलब्ध पूरी हो गई, फिर रावण की आसुरी प्रलब्ध शुरू होती है, यानी सीजन की बात है। जब ये सीजन था तो हर पेड़ पर फल था, हरियाली थी, पर पहले बीज टाइम पर बोया हुआ था ना, ठीक टाइम पर खेती की है, ठीक टाइम पर बल बीज लगाया है, उसका फल बहुत समय तक चलता है। पर कांटे लगाए हैं तो नहीं कुछ पुरुषार्थ किया तो जंगल बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे देवता भोगते भोगते त्रेता के अंत में सुख खत्म हो जाते हैं और रावण की असुरी प्रलब्ध शुरू हो जाती है, वो जो आत्माएं गई हुई थी द्वापर में उतरी, जिन्होंने सतयुग त्रेता के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, संस्कार कौन से लेके गई, कलयुग के अंत वाले विकारी संस्कार लेकर के गए, उसी अनुसार कर्म का हिसाब किताब, प्रकृति का हिसाब किताब, संबंध का हिसाब किताब, आत्मा उस हिसाब से उतरती है। हम सतयुग में उतरते हैं तो किसी किसी की ओर की प्रलोभ लेने के लिए नहीं उतरते, किसी को सुख देने और सुख लेने के लिए नहीं उतरते। हमारा उतरना, आत्माओं का जो उतरना होता है, उसको चार चीजें खींचती है। परम धाम से आत्मा आती है तो जो पुरुषार्थ संगम युग पर किया हुआ होता है उसके पुरुषार्थ की प्रलब्ध अनुसार ही सेकंड राजा बनेगा, थर्ड राजा बनेगा, माला नंबर वा उतरती है। तो कोई अपना ही, इसलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम कोई अपने पेरेंट्स से राज थोड़ी लेते हो, 21 जन्म की प्रलब्ध तुम अभी बनाते हो। प्रकृति को कंट्रोल करते हो, प्रकृति सत्व प्रधान है, तुमको प्रकृति खींचती है। माँ बाप के साथ कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं है, राजा ही अपने पुरुषार्थ से आते हैं। तीसरी बात, तुम्हारे संस्कार दिव्य संस्कार है, उसका भी सुख जीवन में श्रेष्ठ है, वो आते हैं। तो प्रकृति, श्रेष्ठ कर्म, परमात्मा के साथ संबंध, ये सब चीजें तुमको समय पर उतार के लाती है। द्वापर वाली आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके तो गई नहीं, दुख की दुनिया शुरू होती है तो न केवल अपना परंतु दूसरों के साथ कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इसलिए रावण की आसुरी प्रलब्ध शुरू हो जाती है। रावण ने प्रलब्ध इस कलयुग के अंत में वो अपनी प्रलब्ध बनाते हैं, विकारों का फोर्स भरा हुआ होता है, पश्चाताप करके जाते हैं, श्रेष्ठ बन के नहीं जाते। भक्ति भी पहले व्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, हर चीज सत्व प्रधान सत्व रजोतम बनती है, खाट बढ़ती जाती है, खोट मिलता जाता है आत्मा में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी तरह से जाता है परंतु धारणा कम होती है। जो बाबा चाहते हैं हमारी धारणा हो, गुणवान बने, धनवान बने। क्यों? अक्ल नहीं है, इसलिए बुद्धि का योग बाबा से जोड़े तो धारणा को धारण करने के लिए अक्ल आवे। कोई अच्छी अनुभवी है जिनकी धारणा बहुत अच्छी होती है, नंबर वार तो होते ही है ना, समझानी तो सबको एक समान मिलती है, स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। और कैसे याद करो ये भी बताया, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तरीका भी बताया याद करने का। तो मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से खोट निकलेगी, खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ, स्मृति दिलाओ, तुम भारतवासी सतयुग में सत्व प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में ही खाद पड़ती है, खोट मिल जाता है। पवित्र बनने बगैर कोई ऊपर कोई वहां वापस जा नहीं, सतयुग में जा नहीं सकते। सत्व प्रधान पवित्र पावन बनने बगैर नहीं जा सकते, आत्मा फिर शांति धाम में बैठी रहती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते, नई दुनिया में। दुनिया भी सत्व प्रधान, प्रकृति भी सत्व प्रधान, मनुष्य भी सत्व प्रधान, उस हिसाब से कर्म सबके श्रेष्ठ। वो आत्मा को खींच के ले आते। जैसे कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्व प्रधान, फिर पुराना है तो तमो प्रधान हो जाते हैं। तो अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, प्रकृति एकदम खतम तमो प्रधान है, सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। और आत्मा भी जो विश्व के मालिक थे वो बिल्कुल गरीब बन गए। संपन्नता शुरू हुई सर्व गुण संपन्न, वो गुण खत्म होते गए, आश्री स्वभाव होता गया, गरीब बनते गए। पैसे से संपत्ति की बात नहीं है, पैसा से सुख नहीं होता। ये जो सुख विषय विकार मिटाओ, सुख संपत्ति बढ़ाओ। राग है इसमें कौन सी आत्माएं उतरती है, और दुख रावण का डांस कब शुरू होता है और भगवान का डांस हमको क्या सिखाता है। अब सज्जन सब जगरी भूत को पाए हुए, जो तुम ही विश्व के मालिक थे बिल्कुल गरीब बन गए हो, फिर उनको ही शाहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं, तो बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। तुम पुकारते थे ना, हे पतित पवन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, मैं मूर्ख खल कामी विषय विकार मिटाओ पापरो देवा। रियलाइज किया तुमने, बोला परंतु मिटाया नहीं हटाया नहीं। तो अब सदगति कौन दे रहे, सदगति दाता तो परमात्मा ही है, भगवान ही सदगति दे सकते हैं। बाकी भक्ति में सब शास्त्रों में सब भक्ति की बातें हैं, महिमा करते हैं परमात्मा की, पर महिमा योग्य नहीं बनते। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं, ज्ञान से और क्या चीज। ये देवता भी कब बनेंगे, उसका उसका फाउंडेशन क्या है। दिव्य गुण तो है, पवित्रता भी है, और क्या है। पुरानी दुनिया विकारों से, पुराने संस्कारों से वैराग्य, भक्ति से भी वैराग्य। तो बाप कहते हैं सारी दुनिया से वैराग्य। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भक्ति भी सत्व प्रधान, फिर सत्व रजो तमो में आती। ये भी ऐसे है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात गई जाती है। तो ब्रह्मा के साथ तो जरूर ब्राह्मणों पर भी तो यही अप्लाई होगा ना। तुम अभी दिन में आते हो, दिन में जा रहे हो, भक्ति की रात पूरी हो गई। भक्ति में बहुत दुख है, उसको रात कहा जाता है, क्योंकि धक्के बहुत खाते हैं, धक्के ही खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं, और भगवान को भी जानते नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। वो तो सब भगवान है, जानवर में भी भगवान है, पशु पक्षी में भी भगवान है। किसी इस समय इंदिरा गांधी जी ने शरीर छोड़ा था, तो किसी एक वार्तालाप आया था टीवी में, किसी पंडित जी से एक बच्चे ने पूछा, इंदिरा गांधी जी अभी क्या बनी होगी, क्या कुछ भी बन गई होगी पता नहीं, कोई पशु पक्षी का, कोई पशु पक्षी भी बन सकते, मच्छर भी बन सकते। तो अज्ञान कितना, तो परमात्मा आकर के भय को खत्म करते हैं, सबसे बड़ी बात। यथारथ भगवान को जानते नहीं, आत्मा भी बिंदी है परमात्मा भी बिंदी है, ये कोई बात समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मतम से समझाते हैं। अब उसका सिंबॉलिक रूप भक्ति मार्ग में भगीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। इसलिए बुद्धि को सत्व प्रधान बनाने, बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मुझे याद करो तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर कहते हैं भूल जाते हैं, वह संबंध याद नहीं है, प्यार से सब याद करना है। तो नाम रूप संबंध प्राप्ति समय सब बातों की पूरी पहचान चाहिए। वह ऐसे साधन को भूलना चाहिए, लॉयल्टी नहीं है वो, प्यार नहीं है। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या, या तुम क्यों भूल जाते हो? समझा? यानी परमात्मा को जानने के बाद जब तक वो संबंध नहीं जोड़ा है, संबंध से लेन देन होता है, संबंध नहीं है तो पुकारते रहते हैं या उधार मांगते हैं। बाप कहते हैं यहां तुम क्यों भूल जाते हो? कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं कि याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी, रस्ट कैसे उतरेगा? तो मूल बात याद की है, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं समझते। तो बाप जो पढ़ाते हैं ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो ना, बाबा याद करो, और बाबा से मिलता क्या है, वो भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते हो। तुम बच्चों को बुद्धि में है, हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, और क्या है, बेहद का वैराग है। तीसरी बात क्या पक्की रहे, यही जन्म है पुरुषार्थ करने का, यह अंतिम जन्म है, ब्रह्मा बाबा का लास्ट बर्थ है। सूक्ष्म बर्तन में उनके फीचर्स भी वही देखते हो, वही कुंठ में भी देखते हो, जानते हो मम्मा बाबा ही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो वहां को यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता द्वापर आएगा और हम उतरते जाएंगे। क्या अशरीरी होने का अभ्यास है, ज्ञान का वर्णन उस समय नहीं है, ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनः जन्म लेते रहते हैं, परंतु वह आत्माभिमानी रहते हैं। फिर आत्माभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर है वही सुनाते हैं। तो जरूर किन को सुनाते हैं? अपने बच्चों को। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को सुनाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय है। रात दिन का फर्क है भक्ति और ज्ञान में। तुम पुरुषार्थ करके संपूर्ण ज्ञानवान बनते हो। पहली बात, बाप को जाना, संबंध जोड़ा। दूसरी बात, बाप को जान करके याद करते हो। संपूर्ण निर्विकारी ग्रस्त व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म करते बुद्धि योग बाप से लगा रहे। भल कोई भी काम हो, कोई भी जॉब है, बढ़ई का काम करो, महाराजाई करो। राजा जनक कभी तो गाय है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिलेगा। बाप कहते मनमाना भव, माँ में कम याद करो। जब शिव बाबा कहते हो तो सिर्फ शिवलिंग सामने आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है। जो आत्माभिमानी स्थिति आधा कल्प चलती है, इस समय सब देह अभिमान में है। वहां सब आत्माभिमानी होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु बड़ी होती है, यहां सबकी आयु कम है। तो बाप सन्मुख बैठ, तुम बच्चों के इतना अच्छी रीति समझाते, किनको समझाते? बच्चों को तो समझाया, पर कहां फोकस कर रहे हैं? हे आत्मा, आत्मा को सुना रहा। क्यों आत्मा को? क्यों कहते हो आत्मा? बच्चे तो हो पर आत्मा हो, क्योंकि धारणा आत्मा करती है, ज्ञान आत्मा लेती है। तो वो जिसको शरीर नहीं है वो शरीर से न्यारा बनाते हैं। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसीलिए बाबा ने काम दिया था, एग्जीबिशन के म्यूजियम में चित्र बनाते थे, एग्जीबिशन के लिए भी चित्र बनाते थे। तो बाबा ने कहा था कि दो पिक्चर बनाओ कॉन्ट्रास्ट की, आत्मा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग। खास करके जब पांडव भवन म्यूजियम बना था तो बाबा ने लिख के डायरेक्शन भेजा था, और दिखाओ वो पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो कैसे गुणवान है, और परमात्मा किसी से पढ़ते नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट सारा बाबा ने लिख के भेजा था, वो फिर हमने म्यूजियम में चित्र बनवाया था। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वो साकार है श्री कृष्ण, बाबा निराकार है। श्री कृष्ण सर्व गुण संपन्न है, इतना गुणवान किसने बनाया? तो जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया है ना। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रलब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएगा ना तुमको, भक्ति मार्ग की संवेदी खत्म हो जाती है। इसीलिए अब नई दुनिया में जाना है। इस दुनिया से भी वैराग्य चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। ये कपड़ा लेके नहीं आए थे, ऊपर से आत्मा कपड़ा पहन के नहीं आई थी। ये कपड़ा यहां मिला है, शरीर यहां मिला है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें फेल हो जाते हैं। बाप की याद, वर्षे की याद, संबंध सहित याद, प्राप्ति की खुशी, बेहद की कुछ भी कर्म करते योग और फिर बेहद का वैराग, ये सब बातें देवता बनाते। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको वही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी को स्वर्गपुरी कहेंगे, उसी को वैकुंठ कहेंगे, उसी को सुखधाम कहेंगे। जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया भक्ति मार्ग में, वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कब आता हूं, क्या करता हूं, क्या देता हूं, कब मिलता हूं, सारा परिचय अपने आप देते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, कोई दुर्लभ मुझे जानता है, निश्चय करता है। जो निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ का वर्षा पा लेते हैं। यहां पर ही निश्चय बुद्धि विजयंती, संबंध के सुख का अनुभव, ये यहीं प्रलब्ध मिलती है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ध्यान क्या रखना है, कौन सी बात विशेष टेंशन पर रहे, अब पवित्र बन रहे हो, पवित्र दुनिया के मालिक बनने जा रहे हो, तो विकर्म कोई भी विकर्म नहीं करना है, श्रेष्ठ कर्म करने। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा का मुख्य सार, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रह करके कर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ये कपड़ा पुराना है, हो गया है, प्रकृति पुरानी है तो शरीर भी पुराना है। ये कपड़ा पुराना हो गया, जड़ी भूत हो गया, इससे ममत्व निकाल देना है और आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। जो बच्चे संगम पर अतीन्द्र सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है। बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी विल कर दी है ना, तो जब मैंने विल कर दिया उस पर पूरा अधिकार प्राप्त करने वालों के पास कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, कौन सा गुण आ जाता है जो विल को ले सके, वो विल पावर वाले होते हैं। स्वर्ग बाबा ने हमारे नाम विल कर दिए है, सुखदाम हमारे लिए विल कर दिए, सर्वगुण हमारे नाम विल कर दिए, तो विल पावर चाहिए। दूसरी बात, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलते हैं। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्ष के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन, जहां मेरा पन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, मेरी बुद्धि उल्टी चलने लगती है, और जहां मेरा बाबा कहा तो बाबा का सब कुछ मेरा हो जाएगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य, अंतमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, जब इतना पुरुषार्थ करके जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर लेते हैं फिर वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। भलम कहते हैं कि हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का कोई भी कारण तो जरूर है ना, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी बड़ा कोई बड़ा कारण नहीं है, स्लिप होता है पैरना बड़ा कारण नहीं होता है, गिरना होता है तो पैर जरा सा स्लिप हो जाता है, बड़ा कारण नहीं है, जरा सी भूल है, अपने आप को भी भूल गए बाप को भी भूल गए। परमात्मा कहते मुझे याद करो तो मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा। तो कारण क्या बना, सोल कॉन्शियस भूल गया, बॉडी कॉन्शियस से अपने आप को भी भूलते गए परमात्मा बाप को भी भूलते गए तो गिर गए। फिर वाम मार्ग में चले जाते, पांचों विकारों में फंस गए, फिर दुख उठाना शुरू कर दिया, तो यह हुआ दोष, ना कि रचता का दोष है, ये बाबा का दोष नहीं है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा देता है, ये बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख का रचता है ना कि दुख का रचता है। हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख उठाते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुख भोगते हैं, बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का फल ये रियलाइज कराते हैं परमात्मा, उसका दंड जरूर मिलता है। कर्म फिलॉसफी को भी समझने, परंतु ऐसे नहीं कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बुरा तो फिर सत्य त्रेता में तो साथ है नहीं, द्वापर में भी साथ नहीं है, तो हमारे साथ गिराने वाली माया है। कॉमन रीति से कोई भी साथ अथवा मदद लेते हैं तो सुख के लिए मत लेते हैं ना, दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेता, बाकी तो जैसा कर्म वैसे फल की रिजल्ट है। इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त सिग्नल, अभी आज नया मंथ शुरू होता है तो पुरुषार्थ भी दूसरा है, वो नम्रता और निर्माणता पक्की हो गई ना, अब है सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल और सर्व खजानों से संपन्न रहो, थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल अडोल रहने से खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, मान, नाम, शान, पोजीशन, कुर्सी आदि मिलती है, खुशी होती है ना, प्राप्त हुआ कुछ, पर ये तो अविनाशी खुशी है, ये अविनाशी खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। ओम शांति।